आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री ने बहस के दौरान महिला संचालक की उपेक्षा से किया इनकार। भारत में कल गिर सकता है चक्रवात तूफान आसनी। और ऑस्ट्रेलिया की जूनियर व्हीलचेयर टेनिस टीम ने जीता वर्ल्ड टीम कप। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने इस बात का खंडन किया है कि बीती रात दल नेताओं की बहस में वे संचालक सारा एबो की उपेक्षा कर रहे थे। दोनों ही नेता श्री मॉरिसन और श्री एंथनी एल्बनीजी एक दूसरे पर चिल्लाते नजर आए और बार बार समयावधि समाप्त होने के इशारे की अवहेलना करते हुए बोलते रहे। श्री मॉरिसन ने बहस को आवेशपूर्ण बताया और कहा कि इतना चिल्लाने के बीच सुश्री एबो को सुनना मुश्किल था।
I really don't believe gender had anything to do with it. I'm not surprised why it would. Both Anthony and I think we're completely respectful, have always been respectful of females in the workplace and certainly when we're working professionally with them in an environment like that.
प्रधानमंत्री फिलहाल न्यू साउथ वेल्स साउथ कोस्ट के गिलमोर क्षेत्र में हैं और $8 बिलियन की लागत से नए सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदने की घोषणा कर रहे हैं। ये लेबर की मार्जिनल सीट है और गठबंधन इसे पूर्व न्यू साउथ वेल्स मंत्री एंड्रयू कॉन्स्टेंस से जीतने की जुगत में है। वहीं लेबर ने एडिलेड में एक चिकित्सा व्यवस्था के लिए कई मिलियन डॉलर की फंडिंग का वादा किया है। ये घोषणा साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मेलिनोस्किस के साथ राज्य की इकलौती फेडरल मार्जिनल सीट बूथबी से की गई। विपक्ष यह सीट जीतना चाहती है पर उनका कहना है कि इस घोषणा के पीछे केवल यही एक मकसद नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये फंडिंग का फैसला राज्य सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार लिया गया है। ये संयुक्त फंडिंग फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर में 160 अतिरिक्त बेड मुहैया कराएगी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और गहन चिकित्सा केंद्रों में भी सुधार के लिए समर्पित रहेगी। प्रधानमंत्री पूरे कैंपेन के दौरान इस परीक्षा से गुजरते रहे हैं कि क्या सरकार लंबे समय तक राज्य सरकारों के साथ हॉस्पिटल फंडिंग का आधा खर्चा उठाने को तैयार है या नहीं। ये एक ऐसा कदम है जिसे महामारी के दौरान लागू किया गया था लेकिन अब इसकी अवधि पूरी होने को है। नेता प्रतिपक्ष एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि वे कोई भी फैसला राज्यों से चर्चा करने के बाद ही लेंगे।
Based upon their priorities. If we're successful, one of the first things I will do is to convene a meeting with state premiers and chief ministers. I want to work with all of them. And state premiers are in the best position on the ground to say what their priorities for service delivery are.
एक नए शोध में पाया गया है कि ज्यादातर नौजवान महिलाएं जो इन चुनावों में पहली बार मतदान कर रही हैं, खुद को देश की राजनीति से अलग थलग पाती हैं। प्लान इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के आज जारी हुए इस शोध में पाया गया है कि 72% नौजवान महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इस शोध में यह भी पाया गया कि सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 60% लोगों को लगता है कि सरकार के कई वादों के बावजूद भी संसद पिछले साल जितनी या उससे ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं है। प्लान इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की सीईओ सुजैन लिजेना ने कहा कि इस शोध में सामने आए तथ्य चिंताजनक हैं।
The report found that the toxic culture oozing through the heart of Australian politics is deterring girls and young people from careers in Parliament. The result is that we are losing out on an entire generation of bright, powerful and diverse voices who could transform and lead this country for the better. An entire generation of girls is growing up with the message that politics is not for them. We have to change that.
फेडरल चुनाव के लिए आज से अर्ली वोटिंग प्रारंभ हो गई है। लगभग 550 अर्ली वोटिंग सेंटर आज से लेकर इलेक्शन डे यानी शनिवार 21 मई तक देश भर में खुले रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन यानी AEC का कहना है कि वे व्यक्ति जो बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि जो लोग ऐसा कर पाने में असक्षम हैं उनके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। AEC ने मतदाताओं से संयम रखने का भी आग्रह किया है कि क्योंकि जरा सी चूक और कोरोना महामारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। AEC का कहना है कि लोगों को ये सोचकर मतदान के लिए योजना बनानी चाहिए कि आखिरी दिन कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो उन्हें वोट देने से रोकें। प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की बीती रात हुई बहस के एंड पहले जारी हुए ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू अखबार के इप्सॉस पोल में सामने आया है कि दो पार्टी व्यवस्था के आधार पर लेबर गठबंधन से 52-40 की बढ़त को बनाए हुए है। वहीं न्यूज पोल रुझानों के अनुसार लेबर 54% की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 के नेताओं ने यह तय किया है कि रूस से तेल के आयात को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के देशों का कहना है कि ये नए प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था में गहरा नुकसान करेंगे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए जरूरी संसाधन पाने से रोकेंगे। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G7 सभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए बोले कि उनके देश को 5-7 बिलियन डॉलर की सहयोग राशि मासिक रूप से चाहिए और करीब 600 बिलियन डॉलर युद्ध के अंत में पुनर्निर्माण के लिए भी लगेंगे। यूक्रेनियाई राजधानी के दौरे पर कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे यूक्रेन को सैन्य सहायता भी देंगे और जल्द अपना दूतावास फिर खोलेंगे।
Drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports, including funding for demining operations.
इसी बीच आयरिश रॉक ग्रुप U2 के मुखिया बोनो और उनके बैंडमेट दी एज ने यूक्रेन की राजधानी में 40 मिनट तक शो किया। बाद में उनका कहना था कि
It would almost be insulting to the people around here to try and sum it up in words. You know, I'm not sure words can fully express what they've been through. I try with music. The story I wanted to tell today really is that the world needs to hear, which is, you know, how many Ukrainians died fighting fascism, fighting the Nazis. Nearly 8 million people died, Ukrainians, fighting fascists. And then to be called fascists is just ridiculous.
वहीं यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की खाकी जैकेट लगभग 160,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लंदन में नीलाम हुई है। ये पैसा यूक्रेन के युद्ध प्रयासों में जाएगा। और अब समाचार भारत से। भारत में कल यानी मंगलवार को चक्रवात असानी के उत्तर आंध्र ओडिशा तटों से पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मछुआरों को सलाह दी है कि वे 9 मई को बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में, 9 और 10 मई को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में और 10 मई से 12 मई तक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में ना जाएं। मौसम विभाग का मानना है कि ये बुधवार को भयंकर चक्रवाती तूफान और बृहस्पतिवार तक गहरे दबाव में बदल जाएगा। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,207 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 7% तक कम है। जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसके साथ ही कोरोना से देश में कुल मरने वालों की संख्या 5,24,093 तक पहुंच गई है। इसी के साथ भारत में इस समय कुल 20,403 सक्रिय मामले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 3,410 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। अब तक भारत में 190,34,00,000 से भी अधिक कोरोना की वैक्सीन वितरित की जा चुकी हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54.22 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 70 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया की जूनियर व्हीलचेयर टेनिस टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर पोर्चुगल में वर्ल्ड टीम कप जीत लिया है। यह तीसरी बार है जब इस तिकड़ी ने ये बाजी जीती हो जिसमें उन्होंने उच्चतम सीड्स को हराया हो। इसी किशोर तिकड़ी में एक 16 वर्षीय रायली डम्सडे हैं, जिन्होंने अपनी टीम को शुरुआत में फर्स्ट सिंगल्स में ही बढ़त दिलाते हुए जोशुआ जॉन्स को हराकर खेल में बढ़त बनाई। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम की हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी, यहाँ अधिकांश तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में अधिकांश रूप से धूप छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप छांव का मौसम रहेगा, अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं सिडनी में दिन भर बारिश रहेगी, अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी बारिश की आशंका जताई गई है और अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री का अनुमान बताया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल देर धूप के साथ गर्मी बनी रहेगी और दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 जबकि न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। समाचार अब समाप्त होते हैं, नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।